ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुअभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् सच। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनित्यनाम्ने नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम्ने श्रीवारसभामिनी दयिताय कृष्णकृपाब्धाय श्रीकृष्ण संबंध विज्ञान प्रदायिने श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। श्री रूपानुगवृद्ध सिद्धांत ध्वान्त हारिणे नमो गौर किशोराय सचिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय पनुगवराय ते। गौर आविर्भाव मुहूर्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज दो महान आचार्यों का त्रोभाव दिवस है। तो आज पहले जो आचार्य हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो हमारी परंपरा के बहुत महान आचार्य हैं, और दूसरे जो आचार्य हैं श्री रसिकानंद प्रभु, भी हमारी परंपरा के बहुत महान आचार्य हैं। और आज एक और आचार्य का त्रोभाव दिवस है, उनका नाम है श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका भी त्रोभाव उत्सव है आज। तो उनका तो 10:30 बजे से हम लोग यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे उनके शिष्यों के द्वारा और शिला प्रपात जी के शिष्यों के द्वारा। तो हम उनके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है उनके लिए। तो हम लोग दो आचार्यों का प्रमुख आज जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले प्रयास करेंगे कि हम सर्वप्रथम किनके बारे में सुनेंगे, आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में कि रसिकानंद प्रभु के बारे में? हाँ, आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का त्रोभाव दिवस है, तो किनके बारे में सुनना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि विशाल जीवनी है। बहुत अच्छा है। तो ऐसे बोलते हैं, एक जो प्रपन्नामृत नाम का ग्रंथ है, शिला प्रपात जी उसको प्रपोर्ट में लिखते हैं, प्रपात जी उसको कोट करते हैं। तो उसमें एक श्लोक है, उसमें बताया जाता है, ये श्रील अनंताचार्य कहते हैं, या प्रीतिर आसित सततम भगवन नाम कीर्तने सास्यात प्रीतिर तद भक्ता नाम संकीर्तने च भा। अनंताचार्य जी कहते हैं श्लोक के माध्यम से कि जो प्रीति हमें भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन करने में आती है, जो प्रीति हमें भगवान के नाम संकीर्तन में आती है, जो प्रेम है कि हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना है, उनको ग्लोरी उनका महिमा का गुणगान करना है, सा स्यात् प्रीति ही तद भक्ता नाम संकीर्तने च वा। वैसी ही प्रीति हमें किनके प्रति होनी चाहिए? भगवान के भक्तों के विषय में कीर्तन करने के प्रति। अर्थात जो हमारा ध्येय भगवान के प्रति है, उतना ही ध्येय किनके प्रति होना चाहिए? भगवान के भक्तों के प्रति। जैसे कि आदि पुराण में श्लोक आता है, भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास्तमे भक्त तमा मता। भगवान कहते हैं कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे भक्त हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरे भक्त नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान आपके भक्तों का भक्त हूं, तो भगवान बोलते हैं कि सही में वही लोग मेरे भक्त हैं। जैसे कि शिव जी भी पार्वती माता को बोलते हैं पद्म प्राण में, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम तस्मात पर तस्मात क्या है परतरम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, तदिया नाम मतलब भक्तों की अगर सेवा करना ही भगवान की सेवा के समान है। और श्री चैतन्य चरितामृत में स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं महाप्रभु के विषय में कि जब महाप्रभु बोलते थे भक्तों के विषय में तो उनके पंचमुख हो जाते थे, भक्तों का जब गुणगान करते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान तब उनके पांच मुख हो जाते थे। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते है पंचमुख। भगवान को इतना सुख मिलता था जब वो भक्तों की महिमा का गुणगान करते थे तो उनके कितने मुख हो जाते, पांच मुख हो जाते। अर्थात भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों का गुणगान पांच मुखों से करना चाहिए, अर्थात कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, इसका अर्थ ये है, रुकना नहीं चाहिए। अगर भक्तों का गुणगान करने की बारी है तो करते रहना चाहिए, ऐसा है। तो श्रीला जगन्नाथदास बाबा जी महाराज के विषय में कई सारे लोगों का कई सारा निरूपण है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कई सारे शिष्यों ने उनकी जीवनी को लिखा है और उनके जन्म के संबंध में कुछ मतभेद है। कुछ भक्तगण कहते हैं कि उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ और कुछ कहते हैं नहीं पश्चिमी बंगाल में हुआ। तो जो भी हो, तो कुछ भक्त कहते हैं कि उनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और कुछ कहते हैं नहीं 1778 में हुआ। तो जो भी है, ये बहुत हमारी परंपरा के बहुत प्रमुख आचार्य हैं, तो हम कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे फिर उनके बाद श्री रसिकानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो बाबा जी महाराज जगन्नाथदास बाबा जी महाराज जब महाप्रभु की अंतरंग लीला को महाप्रभु जब अपनी अंतरंग लीला को समापन कर लिए और फिर उसके बाद तीन प्रभु आए और उसके बाद जो प्रचार कार्य था कुछ अपसंप्रदायों के कारण प्रचार कार्य रुक गया, यानी महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका शुद्ध आचरण हो, और वो लोग जो प्रचार कर रही थी जो अपसंप्रदाय या जो महाप्रभु के विषय में बोलते थे उनका आचरण इतना गंदा था कि कोई भी सभ्य व्यक्ति महाप्रभु के आंदोलन के प्रति आकर्षित नहीं होता था। तो उस समय ऐसा समय था, सब लोग बोलते थे अरे इन लोगों को क्या हो गया है, ये लोग इतने पाखंडी हैं, महाप्रभु का नाम लेके गौरांग बोल के सब लोग लूट मार करते थे, वैश्यावृत्ति करते थे उस समय। तो उस समय महान आचार्य के रूप में जगन्नाथदास बाबा जी महाराज सभी वैष्णवों के प्रमुख थे, सभी वैष्णवों के मुकुटमणि थे, सभी वैष्णवों ने उनको अपना हेड बनाया था वृंदावन में। और ये जगन्नाथदास बाबा जी महाराज का नियम था कि 6 महीना वृंदावन में रहेंगे और 6 महीना नवद्वीप में रहेंगे। जो कोई व्यक्ति अगर नवद्वीप में और वृंदावन में भेद करता है तो बाबा जी महाराज से पाखंडी बोलते थे कि पाखंडी है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, वृंदावन में और नवद्वीप में। तो इसी बात को दिखाने के लिए बाबा जी महाराज क्या करते थे, 6 महीना नवद्वीप में रहते थे और 6 महीना वृंदावन में रहते थे, इसी चीज को दिखाने के लिए। और उनके बहुत सारे शिष्य थे, ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने जो दीक्षा लिया वो मधुसूदन बाबा जी महाराज जो सूर्यकुंड में रहते थे, आप कभी सूर्यकुंड जाएंगे तो आप देखेंगे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज सिद्ध बाबा हुए, तो कुछ भक्तगण कहते कि उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, कुछ कहते नहीं नहीं एक जगदानंद नाम के एक बाबा जी महाराज हुए उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, कोई कहते कि कृष्णदास बाबा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया। तो जो भी है दीक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह से माना जाता है कि मधुसूदन दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लिया और उनके बहुत सारे शिष्य हुए, जैसे कि भगवान दास बाबा जी महाराज, गौर हरिदास बाबा जी महाराज कदमखंडी में, हरे कृष्णदास बाबा जी महाराज हुए। और इनके जो पर्सनल जो शिष्य थे उनका नाम आता है बिहारी लाल जो ब्रजवासी थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि 3 दिन तक, ऐसा कहते हैं भक्तगण, 3 दिन तक बाबा जी हफ्ते में 3 दिन तक बाबा जी निर्जला उपास करते थे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। सोचिए, ये उनकी, मैं जब जीवनी पढ़ रहा था अलग अलग जगह से, मेरे पास बहुत सारी जीवनी रखी हुई है अलग अलग लोगों से जो मैंने प्राप्त किया, तो उसमें ऐसा वर्णन आता है। तो जब बाबा जी महाराज ब्रज में रहते थे तो उनका जो मुख्य स्थान था रहने का वो था सूर्यकुंड। आप सबको पता है सूर्यकुंड एक विशेष स्थान है, कृष्ण राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं का प्लेस है, तो बाबा जी महाराज वहीं पर रहते थे। तो जब सूर्यकुंड के उस समय बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, बहुत झाड़ियां थी, तो किसी तरह से वो कुछ झाड़ियों में किसी तरह से भजन करते रहते थे। जब वहां के लोगों ने देखा कि बाबा जी महाराज तो सिद्ध बाबा हैं तो उनके लिए कुछ एक मंदिर बना दिया, जब मंदिर और कुछ बना दिया छोटा सा रूम, तो बाबा जी बोले कि देखो ये मंदिर तो हमारे लिए नहीं होता, मंदिर तो भगवान के लिए होता है, तो भगवान को यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने बिहारी को बोला, बिहारी आप जाओ और डोनेशन कलेक्शन करो और एक भगवान की सुंदर सी प्रतिमा लेके आओ इधर। तो चले गए, तो अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ बाबा जी ने महाराज इनको भेजा था, तो वो कटुआ गए, जो बंगाल में कटुआ नामक स्थान है जहाँ महाप्रभु ने संन्यास धारण किया था, वहाँ पे गए और वहाँ पे अनेक अनेक लोगों से, इसमें नाम वर्णित है, अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि इकट्ठी की और फिर उस राशि को व्यय करके उन्होंने एक सुंदर गौर नेताई को लेके आए बंगाल से और स्थापित किया सूर्यकुंड में। वो गौर नेताई इतने सुंदर थे कि वो सोने के जैसे दिखते थे, तो सब ब्रजवासी, उन्होंने उनको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, स्वर्ण गौरांग। क्या बोलते थे? ये स्वर्ण गौरांग है। अब क्या था, स्वर्ण गौरांग की चर्चा चारों तरफ फैल गई कि बाबा जी महाराज इतना सारा भंडारा कराते हैं। उस समय वर्णन आता है कि जीवनी में लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये कितने होते थे उस समय, सोचिए बाबा जी महाराज ने 3,000 रुपये वैष्णवों को प्रसाद खिलाने में व्यय कर दिए। तो सब लोग चोर भी खाने आए थे, तो वो लोग देखे यार बाबा जी बड़े अमीर हैं, इनके पास बहुत पैसा होगा, तो एक काम करते हैं रात में लूट लेते हैं। तो रात में आ गए, सारा चोरों का ग्रुप आ गया। जब चोरों का ग्रुप आ गया तो क्या हुआ, तो बाबा जी महाराज बोले हाँ मुझे पता है आप लोग चोर हैं, चोरी करने आए हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो भिकमंगा साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला संपत्ति कहाँ है तुम्हारी? बोला मेरी संपत्ति वो जो मंदिर है ना उसके अंदर है, ले लो जाओ, मुझे परवाह नहीं है, वो अंदर जो ठाकुर जी है ना वो ले, उनसे ले लो, उनके पास सब कुछ है। तो वो गए चोर, चोर ने देखा कि सच में ये बिगड़े जो सोने की है, उनको लगा कि यही संपत्ति है। तो चोर उसको लेके भागा, जो लीडर था चोरों का, मुखिया जो लीडर था। तो जब भाग रहा था तो अचानक ऐसी घटना हुई कि चोर का सर और स्वर्ण गौरांग है ना, वो दोनों दीवार में लगे, क्योंकि उठा नहीं पाया और चोर बेहोश होके वहीं गिर गया। और जब ये देखा तो जो चोर के जितने लोग थे वो भाग गए, चोर को वहीं छोड़ गए है ना। तो चोर मूर्छित हो गया, बाबा जी मेरा भजन करते रहे, उनका जो सेवक था वो भी सोता रहा और ठाकुर जी भी पड़े रहे, कोई चिंता नहीं। बाद में जब चोर सुबह हुआ तो चोर ने देखा यार ये क्या विग्रह, यार ये तो खतरनाक विग्रह है, इसको छोड़ो यहीं पे, और अपना जो सामान था वो लेके भाग गया। वो तो ऐसी लीला आती है। तब बाबा जी महाराज ने बोला देखो भगवान को रखना ठीक नहीं है, आज ये लोग आए फिर कोई और आएंगे। बिहारी एक काम करो तुम इनको वृंदावन में दे आओ, जाओ वृंदावन में दे के आओ। तो वृंदावन में फिर दिए, तो बोलते हैं कि एक गोसाई थे वृंदावन में गोपालबाग में जो धोबीपाड़ा है, तो वहां पे आज भी वो सोनार गौरांग सेवा हो रही है इतने लंबे समय से। आप कभी जाएंगे वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर, तो राधा गोपीनाथ मंदिर के ठीक सामने से गली जाती है, जहां तक वो गली जाएगी चलते रहिए, जहां वो खत्म होगी और सामने जो मंदिर आएगा आपके इस हाथ पे राइट हैंड पे, वो मंदिर कौन सा होगा, सोनार गौरांग। छोटा सा मंदिर है लेकिन विग्रह इतने खूबसूरत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों ने दर्शन किया है? एक माता जी ने दर्शन किया है मात्र। तो आज का दिन है उनका, तो आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए सोनार गौरांग। तो ऐसी घटना आती है। तो फिर बाबा जी कभी फिर दोबारा ब्रज में आए, फिर बाबा जी कहने लगे ना ना भगवान के बगैर मन नहीं लगता, भगवान को लाना चाहिए। अभी किसको लाएंगे? बोला अब तो दे दिए। बोला दूसरे ठाकुर जी को लेके आओ, दूसरी विग्रह को लेके आओ। तो दूसरी विग्रह को कैसे लाएं? तो एक बार क्या हुआ, एक गोसाई जी थे ब्रज में, उन्होंने क्या किया, एक षडभुज गौरांग की विग्रह जो बहुत सुंदर थी उसको वो किसमें छुपा के रखते थे, जो धान का जो प्याल होता है ना, धान जो बच जाता है उसके अंदर छुपा के रखते थे वो। और एक बार क्या हुआ, किसी कारणवश वो धान का पुआल बैलगाड़ी में आ गया और बाबा जी महाराज सूर्यकुंड पे जप कर रहे थे। बाबा जी महाराज बिहारी को बोलते हैं बिहारी जाओ उस बैलगाड़ी के पास और उस बैलगाड़ी में दो पुआल दो घट्टे है ना, दो ढेर हैं धान के, उसमें से तुम बड़े वाले को उठा के ले आओ जाओ। वो आश्चर्य हो गए यार ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। अब बिहारी तो एकदम अच्छा सेवक था, तो गया बड़े वाले पुआल को उठा के ले आया और जैसे उसको खोला तो षडभुज गौरांग प्रकट हो गए। बोला इनकी सेवा करो इधर, तो उनकी सेवा होने लगी। फिर उन्होंने बोला देखो अभी 6 महीना पूरे हो गए, नवदीप जाना है, इनको भी किसी को देके आ जाओ। ऐसा बोलते हैं। तो आप जब जाएंगे गोपाल गुरु मंदिर में तो वहां के पास में एक त्रिभुवन गली आती है ना, तो वहां पे आज भी उनके षडभुज गौरांग सेवित हो रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं आज भी। तो ये बाबा जी के द्वारा सेवित दो विग्रह हैं, षडभुज गौरांग और ये। तो लीला तो बहुत सारी हैं, समय कम है। तो ऐसा हुआ तो वर्णन आता है कि फिर ये नवद्वीप चले गए, तो कुछ नवद्वीप की लीलाओं का वर्णन करते हैं हम। नवद्वीप पहुंचे तो कहाँ गए बाबा जी? महाराज बोलते हैं अंबिका कालना गए, जहां पे गौर निताई हैं गौरीदास पंडित के, अंबिका कालना। तो वहां पे एक बाबा जी महाराज रहते थे, उनका नाम था भगवान दास बाबा जी महाराज। वो भी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और ये भी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो कहते हैं कि जब आलिंगन के एक दूसरे ने, एक दोनों वैष्णवों ने एक दूसरे का, तो भाभा भाभावेश में चले गए। 3 दिनों तक दोनों को भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ कौन सी स्थिति में है। और उनके दोनों के सेवक विष्णुगुप्त और बिहारी, 3 दिन हो गया वो राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं समाधि में बैठ के। 3 दिन के बाद जब बाह्य स्थिति आई तो बिहारी से पूछते हैं बाबा जी महाराज, बिहारी तुम्हारा हेल्थ ठीक है ना, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? बिहारी बोलता है प्रभु आप मेरे गुरुदेव हैं, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उस समय आधी रात थी, तो बाबा जी बोलते देखो अभी तो शाम ढली है ना, कोई बात नहीं, अभी तो शाम ढली है ना, 12 बज रहे थे लेकिन अभी शाम ढली है ना, चिंता मत करो। तब एक व्यक्ति आता और बहुत सारा प्रसाद का सामग्री देके जाता है बाबा जी महाराज को। तब बिहारी को बोलते हैं बिहारी आराम से खाओ, खा के सब लोग ने प्रसाद खाया, बाबा जी मैंने खाया 7-8 दिन के बाद, और फिर सब लोग सो गए, ऐसा वर्णन आता है। तो बोलते हैं कि जब बाबा जी महाराज चतुर्मास करते थे तो कैसे करते थे सुनिए। तो चतुर्मास करते थे तो एक, जब पहला मास में वो क्या खाते थे, 4 पकियों केले, बस एक दिन में क्या खाएंगे, बस कुछ नहीं खाएंगे, 4 पकियों केले खाएंगे, पूरा हो गया पहला महीना पूरा करेंगे 4 पकियों केलों के द्वारा बस। दूसरे महीने वो क्या करते थे, दूसरे महीने वो 1 पका अमरूद खाते थे हर दिन, बस 1 पका अमरूद खा लिया हो गया। ये बाबा जी महाराज का स्टैंडर्ड है, फॉलो मत करना। देखिए कभी कभार क्या कभी कभार क्या होता है ना, भक्त लोग कुछ कथा सुनते हैं तो फॉलो करने लग जाते हैं तुरंत, उनके जैसा आचरण करने का प्रयास करते हैं, पर कभी भी है ना किसी महान संत के कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपने गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है ना 16 माला ध्यान पूर्वक करना, उसको कर लो बस खत्म होगी सारी बात ना। तो ऐसा तीसरे महीने वो केवल एक एक कप छाछ पीते थे बस, तीसरा महीना कैसे करते थे वो, 1 कप छाछ पीते थे। और चौथे महीने बोलते केवल केला के पत्ते जो होते हैं ना केला के पेड़ में, उसको उबाल लेते थे और उसका जो जूस होता था पी के रहते थे। ये 4 महीना उनका ऐसा हर साल बीतता था, 4 महीने। तो ये आता है। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मुझे मंत्र प्रश्न करना है, मंत्र प्रश्न मतलब मंत्र सिद्धि पाना है। तो मंत्र सिद्धि पाने के लिए कहां गए वो, ना तो वृंदावन आए ना नवद्वीप आए, वो ऋषिकेश गए। बोला मैं ऋषिकेश जाना है। तो ऋषिकेश गए तो बाबा जी महाराज ने कैसे मंत्र प्रश्न किया, तो सुबह से लेके शाम तक किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, केवल जप करते रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर शाम को थोड़ा हविस्तन लेंगे, फिर पूरी रात जप करते रहेंगे, फिर सुबह हो जाएगी। वो कब सोए कुछ समझ में नहीं आता था, पूरा जप, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो ऐसे 3 महीना बीत गए। तो बिहारी को बोला बिहारी देखो मेरे व्रत का कितना फल आया है, तुम दिख रहा है? बोला बाबा जी हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे तो बस वही दिख रहा है जो आप हविसन में खाते हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 5 महीना हो गए। जब 5 महीना हो गए तो फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोले देखो बिहारी अब मुझे समझ में आ गया कि भजन किसे कहते हैं, यह है भजन की सिद्धि। कोई भी साधक यदि भजन में सिद्धि पाना चाहता है तो उसे इसी तरह व्रत का पालन करना चाहिए। ये बाबा जी महाराज बोले एक नियम पूर्वक कि हाँ मुझे ऐसा करना है। बाबा जी महाराज बोलते थे अक्सर अपनी शिक्षाओं में कि ये कोई व्यक्ति ने अगर गुरु महाराज ने अगर बोला है कि आपको 16 माला करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका थोड़ा तबीयत खराब है, हो ही जाता है, तो आप सोचते हैं कि नहीं अभी हो नहीं पाएगा मेरे से। तो बाबा जी महाराज बोलते नहीं, चाहे जान चली जाए लेकिन उसको पूरा करके ही सोना है। ये बाबा जी महाराज बोलते थे। कुछ लोग भक्त लोग होते हैं ना, आज की माला कल कर लेंगे, कल की माला परसों कर लेंगे, डिवाइड होकर 108 कर लेंगे, ऐसे करके तो कितनी खत्म हो जाती है पता नहीं है। तो बाबा जी बोलते ये बिल्कुल गलत है, ऐसे गौरांग के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितनी माला जो सोची है वो करना है। हमने कई सारे हमारे वर्तमान आचार्यों के मुख से सुना है कि जब से उन्होंने प्रपा से दीक्षा लिया है तब से लेके आज तक एक भी दिन उन्होंने 16 माला, ऐसा नहीं गया कि उस दिन 16 माला नहीं हुई उनकी। हो इतना प्रचार में रहते हैं, इतना संकीर्तन कर रहे हैं, इतना सब कुछ करते हैं लेकिन 16 माला पहले पूरी करते हैं। तो ये नियम लेना चाहिए भक्तों को, तभी हो सकती है।
तो फिर बाबा जी महाराज बताए कि यदि कोई व्यक्ति को उम्र बढ़ाना है, अपनी उम्र बढ़ाना है, सब लोग चाहते हैं ना कि कलयुग में थोड़ी उम्र लंबी हो जाए, है ना। तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ, उम्र बढ़ाने का मैं मंत्र तुम्हें देता हूं। बाबा जी बोलते से कि 3 बजे से लेके 7 बजे तक कभी मत सोना, अगर उम्र बढ़ानी है तो। कितने बजे से? 3 बजे से लेके 7 बजे तक मत सोना, और शाम को 5 बजे से लेके 10 बजे तक मत सोना, और इन 3 बजे से लेके 7 बजे तक जप करना, और 5 बजे से लेके 10 बजे तक जप करना बिना किसी से बात किए, तुम्हारी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। ये बाबा जी महाराज ने फॉर्मूला दिया है। प्राय हमारे इस्कॉन में भी भक्त, मैं प्राय देखता हूँ समाधि मंदिर में भक्तगण 3 बजे ही आ जाते हैं, कोई 2:30 बजे ही आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब 3 बजे से लेके पूरा ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, फिर ऐसा बाबा जी महाराज बोलते थे, नहीं तो हमारी आयु नहीं बढ़ेगी। तो एक बार क्या हुआ, ये बहुत स्पेशल लीला, आप लोग ध्यान सुनिए, ये बहुत गूढ़ लीला है। एक बार क्या हुआ, एक मेहतर था जो सफाई करते हैं वृंदावन में, तो वो रोटी मांग रहा था घरों घर से। तो बाबा जी महाराज जप कर रहे थे, और बाबा जी महाराज ने देखा कि ये तो रोटी खा रहा है ना। तो जैसे वो खाने वाला था, बाबा जी आ गए उसके सामने, बोला भाई मुझे आप अपने हाथ से एक रोटी प्रदान करो। वो देख के डर गया, बाबा जी महाराज मैं बहुत नीच जाति से हूँ, मैं इतना, मतलब इतना मेरा पतित हूँ, मैं आपको रोटी दूंगा तो क्या होगा पता है मेरा हाल, बस कुछ नहीं चाहता मैं, मुझे आपसे रोटी चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा, बाबा जी महाराज ने बोला। अब इतने शुद्ध महात्मा है, सबको उनके बारे में पता है, अब दे तो प्रॉब्लम और ना दे तो प्रॉब्लम। तो उन्होंने सोचा कि वैष्णव की अगर इतनी इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आखिरकार उन्होंने क्या किया, चपाती दे दिया एक, और सबके सामने जितने लोग थे बात ऐसे उड़ गई कि बाबा जी महाराज ने एक पंगे के हाथ से रोटी खा लिया, सिद्ध महात्मा। जितने बड़े बड़े जो वृंदावन में उस समय महान आचार्य, महान जो थे, महंत जो थे वृंदावन में, वो सब दुखी हो गए, और सब लोग बाबा जी महाराज के पास में आए, और बाबा जी महाराज से बोलने लगे, अरे ये क्या किया आपने, आपने एक भंगी के हाथ से खाया, भंगी किसे हाथ से रोटी लेके खाया, अरे आपको पता है आप कौन है, आप इस ब्रज मंडल के मुकुटमणि हैं, हम सभी लोग आपको दंडवत करते हैं, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता। बाबा जी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया, बाबा जी महाराज ने सबको डांट लगाया, बोला चुप, अब मैं जो बोलता हूं सुनो, तुम लोग क्या बोलते हो वो नीच जाति का है, और तुम लोग बहुत बड़ी जाति क्यों, अरे याद करो कृष्ण ने क्या बोला था श्रीमद भागवतम में, भागवतम याद कराया उनको, भगवान ने बोला था कि तुम सभी ऋषि मुनि सभी देवतागण क्या करो, ब्रज में आकर रहो, निवास करो, और वो जब से मैंने पंक्ति सुना है ना तब से मैं सभी यहाँ के जीवों को, ऋषि मुनियों को, जो भी है, मैं सब भगवान के पार्षद के रूप में देखता हूँ। फिर बोलने लगे, और तुम उसको बोलते हो भंगी है वो, अरे वो दिन रात ब्रज की रज में अपने को रमन करता रहता है, पूरा रज उसके शरीर में लगता है, अरे उससे बड़ा शुद्ध व्यक्ति कौन होगा, अरे उसे प्रति क्षण ब्रज रज की प्राप्ति होती है, और तुम लोग को क्या पलंग पे सोके प्राप्ति होती है ब्रज रज की, बात करते हो, सब लोग भाग के डर के मारे, कोई नहीं रुका उनके पास, बोला तुम लोग पलंग पे सोने वाले, तुम लोग को क्या पता ब्रज रज की महिमा क्या है सच में, तो सब लोग भाग गए। तो इससे हमें समझना चाहिए कि बाबा जी महाराज का क्या स्तर है, समझ रहे ना। अभी कोई नया व्यक्ति आता है थोड़ा, तो हम लोग ऐसे टच करने में भी ना लोगों को वो करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हमें प्रचार करना है कृष्ण भावनामृत में, सबको बराबर सम्मान देना है, इस भाव से ये प्रदर्शित होता है। तो हमें जानना चाहिए लीलाओं को, ऐसे बहुत सारी लीलाएं, मैं भी उन पर जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे इसमें 25-22-23 लीला मैंने लिखा है, लेकिन मैं 3 मुख्य कार्य बताऊंगा बाबा जी महाराज के जो हमारी परंपरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला कार्य है बाबा जी महाराज का, गौर अभिर्भाव भूमिस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय। पहला कार्य क्या किया, जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 1890 और 93 के समथिंग ये बताया सारे बाबा जीओं को कि यही गौरंग महाप्रभु की जो भूमि है वो मायापुर में, पहले लोग नवद्वीप में मानते थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये कहां पर है, ये मायापुर में, तो बाबा जी लोग नहीं मानते थे। बाबा जी लोग बोलते थे कि देखो हम कैसे मान लें, आपने बोल दिया हम मान लें, नहीं कुछ बड़े व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसमें बड़ा व्यक्ति कौन था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वही प्रमुख थे सारे वैष्णवों के। बोला अगर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अगर बोल दें कि यही गौरांग महाप्रभु की भूमि है, जन्म स्थली है, तो हम लोग मान लेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को इन्वाइट किया कि आप आइए और प्रमाणित कीजिए कि क्या यही गौरांग महाप्रभु की जन्मभूमि है। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पालकी में आए और उस जगह पे आए, तो आते ही वो पालकी से कूद गए, ऐसा बोलते हैं उस समय उनकी उम्र कम से कम 122 123 साल थी, है ना। उनकी आंखें से दिखता नहीं था, उनके हाथ पर एकदम सुन रहते थे, और वो दिखाने के लिए वो बिहारी उनकी आंख ऐसे पलक से उठा के दिखाता था, देखो बाबा जी महाराज। तो जैसे ही बाबा जी महाराज ने देखा वो पालकी से कूद गए और छह फुट जंप लगाने लगे और क्या कहने लगे, यही तो हमार गौर अभिवार भूमि, अरे यही तो मेरे गौरांग की भूमि है। और ये उनके सब लोग आनंदित हो गए और शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके साथ डांस करने लगे और सब लोग डांस करने लगे, फिर प्रमाणित हो गए कि यही है गौरांग महाप्रभु की जन्मस्थली। पहला कार्य ये कि उन्होंने निर्दिष्ट किया जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने। और उसके बाद में वर्णन आता है और भी स्थानों का, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के साथ मिलकर बताया कि ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, क्योंकि जो सिद्ध महात्मा होता है वही बता सकता है, हम जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं बता सकते यहाँ क्या हुआ है। दूसरा कार्य उनका आता है, हम जो ये महामंत्र बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये किन्होंने दिया, ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने दिया हमें, इन्हीं की कृपा है। ऐसा बोलते थे, देखो लीलाएं बहुत है पर मुझे इच्छा हो रही है सुनाने की तो मैं सुनाऊंगा। ऐसा बोलते थे कि जब ये बहुत वृद्ध हो गए तो सारे ब्रज के जो बड़े बड़े आचार्य थे महंत थे बोले कि महाराज अब आप कहाँ जा रहे हो, इतने वृद्ध आप ब्रज में रहिए और यहीं अपने शरीर का अंत कीजिए, ऐसे कहने लगे। बोले ना, ये ब्रज में अपराध बहुत करते हैं तुम लोग, ब्रज में थोड़े सी अपराध लग जाता है तो सब लोग आश्चर्य हो गए। तुमने देखा जसोदा मैया को कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा सा मक्खनी तो है ना बंदरों को खिलाया था, थोड़ा सी तो बांध दिया, लेकिन सची माता को देखिए, अरे पूरे घर के बर्तन तोड़ दिए गौरांग महाप्रभु ने, निमाई ने। सची माता ने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। तो कृष्ण को ज्यादा प्रसन्नता नवद्वीप में मिलती है, इसलिए मैं नवद्वीप जाऊंगा, ये उनका भाव है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह में कौन कहां से ये पॉइंट आ गया, हाँ नवद्वीप, नवद्वीप में। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो मैं कौन से पॉइंट पे था, हाँ जय श्री कृष्ण। तो वो बताते थे कि जो गौर है ना वो सबसे दयालु है, और जो भी व्यक्ति देखिए उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने कृष्ण को खत्म कर दिया, कृष्ण को अलग कर दिया, बोला ब्रज में रहेंगे तो राधा रानी के ऊपर आश्रित रहेंगे, नवद्वीप में जाएंगे तो गौर नित्य का भजन करेंगे, कृष्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को एक मंत्र दिया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी गौर भक्त वृंद, बोला इसमें सब कुछ आ गया, इसमें गदाधर भी आ गए, राधा रानी भी आ गए, सब कुछ आ गए, तुम इस मंत्र को जपो और इसके बाद क्या करो, फिर हरे कृष्ण महामंत्र को लीजिए। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें आज जय श्री कृष्ण चैतन्य ये जो पंचतत्व मंत्र उन्होंने दिया हमें। तीसरी कृपा, आज हम जो फेस्टिवल मना रहे हैं ना पूरे इस्कॉन में या गौड़ी वैष्णव परंपरा में, कि कल किस आचार्य का जन्मदिन है, परसों कौन सा आचार्य होगा, तो बाबा जी महाराज एक बार ध्यान में मग्न थे तो उनके सामने बिमला प्रसाद आए, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र बिमला प्रसाद, वो आए और बाबा जी महाराज को प्रणाम किया। बाबा जी महाराज को प्रणाम करके जब उठे तो बाबा जी महाराज ने समाधि में ही ऐसे करके उनके ऊपर हाथ रखा, हाथ रख के बोले कि देखो बिमला प्रसाद, आज मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं और मेरी इस आज्ञा को पूरा करना। वो तो एकदम प्रसन्न हो गए सुख से, बताइए क्या आज्ञा है। तो बोलते हैं कि बाबा जी महाराज उनको बोला कि आप क्या करो, आप बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हो, आपने सूर सिद्धांत लिखा है, तो आप क्या कीजिए, वैष्णवों के जो दिन में जिनका त्रोभाव हुआ है और जिस दिन आविर्भाव हुआ है वो एक पूरी लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप आगे जाके उसी क्रम में आप फेस्टिवल करना, फेस्टिवल मनाना, त्योहार मनाना वैष्णवों के आविर्भाव में और त्रोभाव में। तो उन्होंने ये आज्ञा को श्रोधार्य किया बाबा जी महाराज से, और फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कुछ ही समय के बाद, ऐसे बोलते हैं उस समय बिमला प्रसाद जी की जो आयु थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर की 12 वर्ष थी, तो उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने क्या किया, एक पूरा कैलेंडर तैयार कर दिया, जो आज हम वैष्णव कैलेंडर जो हम उठाते हैं ना इसकोन से, वो कैलेंडर। तो ये भी किनकी कृपा है, जगन्नाथ बाबा जी महाराज की कृपा। तो ये तीन महान कार्य जिनके जो तीन महान कार्य हैं, इनके लिए सदा वैष्णवगण ऋणी रहेंगे, गौड़ी वैष्णव परंपरा के सदा ऋणी रहेंगे। तो हम प्रार्थना, देखो बहुत सारी लीलाएं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि रसकानंद प्रभु के विषय में बोलना है, मुझे बोला गया है एक ही के विषय मत बोलना, दोनों के विषय में बोलना। तो मैं क्षमा कीजिए। तो हम प्रार्थना करेंगे कि इसीलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज हम पे कृपा करें और हमें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो और हम भी इसी जन्म में भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक महान आचार्य श्री रसकानंद प्रभु के बारे में विषय में सुनेंगे। उनके ऐसा वर्णन आता है कि एक उनके शिष्य हैं गोपीजन वल्लभ, उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसका नाम है रसिक मंगल, रसिक मंगल, और रसिक मंगल के प्रारंभ में ही बोलते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रसिकानंद प्रभु की ग्लोरी का वर्णन कर सके, उनकी महिमा का गुणगान कर सके। मतलब किसी में शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवत आविष के अवतार हैं, भगवान के ही स्वयं अवतार हैं रसिकानंद प्रभु। सोचिए, हुआ ऐसा कि उड़ीसा प्रांत, जो उड़ीसा प्रांत है उस समय, जो उड़ीसा प्रांत था बहुत सारे पाखंडियों से घिर गया, बहुत सारे बदमाश पाखंडी सब लोग उधर भर गए, सब लोग एक दूसरे को काटने लगे, यवनों का राज हो गया उधर आजे प्रांत में, और सब लोग बहुत दुखी हुए। तो उस समय सारे भक्तगण प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आइए और हम लोग को बचाइए, भक्तगण बहुत दुखी थे। तो ऐसा इसमें वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, श्रीला नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उनके विषय में, कुछ पंक्तियां लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान आचार्य हैं। श्री गोपी बल्लभपुरे प्रेमाविष्ट कैला, श्री गोविंद सेवा श्रीर श्री के समर्पिला, रसिकानंदेर महा प्रभाव प्रचार, कृपा करी कैलु दस्यु पासंडी उद्धार, भक्ति रत्न दिला कृपा करिया यवने, ग्रामे ग्रामे भ्रमी लेना लैया शिष्य गने, दुष्टेर प्रेरित हस्ती तारे शिष्य कैला, तारे कृष्ण वैष्णव से वायन जिला, से दुष्ट यवन राजा प्रणत हईला, नवनीत घर कत जीव उधारिला, श्री रसिकानंद सदा मत संकीर्तने, केवाना व्यवल होया तारे गुण गने। तो इसमें बोलते हैं कि श्री गोपी वल्लभ प्रभु जो पास में ही है बालासुर के, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, गोविंद की सेवा, जो वहां पे जो गोपी वल्लभ भगवान है, गोपी वल्लभ एक भगवान का नाम है, और वहां पे गोविंद राय भी हैं पास में ही, तो उनकी सेवा को उन्होंने सुचारू रूप से व्यक्त किया, और उनकी भक्ति का महाप्रचार था। उन्होंने क्या किया, अपनी भक्ति के प्रचार, अपनी भक्ति के प्रभाव से दस्यु पाषंडी और यवनों का उद्धार किया, और यवनों को भक्ति रत्न प्रदान कर दिया। देखिए यवन जो होते हैं कितना पाप करते हैं, लेकिन उनको भी भक्ति प्रदान कर दी उन्होंने। ग्रामे ग्रामे भूमिले नैया शिष्य गने, और गांव गांव घूमे रसिकानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ में, और बोलते हैं ये बहुत स्पेशल है, दुष्टेर प्रेतेर हस्ती तारे शिष्य कैला। मैं थोड़ा बात ये पहले बता देता हूं क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि एक बार क्या के यवनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, एक यवन थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हाथी को पागल कर दिया, एक पागल हाथी था उसको बाहर छोड़ दिया, जिस समय रसिकानंद प्रभु आ रहे थे उस जगह पे संकीर्तन करने के लिए। तो वो पागल हाथी क्या करता था, सब घर भर को तोड़ दिया सब कुछ, और यमन लोग ऊपर अटारी पे चढ़ के बोलते थे कि देखते हैं आप किस में कितना शक्ति है, ये रसिकानंद क्या सोचता है अपने आप को, भगवान बोलते हैं लोगों से, आज पता लग जाएगा कि हाथी भगवान है कि ये भगवान है, देखते हैं। ऐसा ही हुआ, सब लोग डर गए, भार्ग में हाथी आ गया सामने, सब लोग बोल रहे रसिकानंद प्रभु को कि प्रभु आप मार्ग बदल लीजिए, ये बहुत खतरनाक हाथी है, ये राजा का स्पेशल पागल हाथी है, जब किसी को मरवाना होता है ना तो राजा ऐसा ही करता है। हाँ, रसिकानंद प्रभु बोले कि देखो मुझे केवल कृष्ण पे भरोसा है, मैंने मेरे गुरु महाराज श्यामानंद प्रभु से कृष्ण नाम लिया है, तो मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है। अब मैं प्रचार में आ चुका हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हाथी के डर के मारे लौट जाऊंगा, मैं इसे भी वैष्णव बना दूंगा, इसे भी भक्त बना दूंगा। हाँ, तब वो हाथी के पास में गए और हाथी को बोले कृष्ण कृष्ण बोलो, गौरांग बोलो, तुम गौरांग का नाम लो, कृष्ण नाम लो। हाथी के कान में आवाज गई कृष्ण कृष्ण, हाथी ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो साक्षात भगवान है। हाथी ने दंडवत प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, सच में। और प्रणाम करके हाथी ने कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, गौरांग गौरांग उच्चारण किया। तब हाथी को बोला कि हाँ तुमने अब अपनी सही स्थिति में आ गए, पाप कर्म के कारण तुम्हें ये जानवर की योनि मिली, लेकिन अब तुमने कृष्ण नाम लिया, कृष्ण नाम का श्रवण किया, अब तुम भक्त हो गए, अब मैं तुम्हें अपना शिष्य रूप में स्वीकार करूंगा। हाँ, और उनको नाम क्या दिया, गोपाल दास। हाथी को नाम दिया, गोपाल दास नाम दिया हाथी को। ये है रसिकानंद प्रभु की ग्लोरी। सोचिए, हाथी नहीं, ऐसा वर्णन आता है कि एक बार जब जंगल में आग लग गया, अब लोग निकल नहीं पा रहे, कैसे जाए, कितना भागेंगे, बड़ा दुखद हो गया। रसिकानंद प्रभु के जो लोग थे, रसिकानंद प्रभु ने बोल दिया कि आप जाना चाहे तो जा सकते हैं ना, और मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि वो तो स्वयं भगवत भगवत आवेश अवतार हैं। तो वहां पे क्या था, कुछ टाइगर सो रहे थे, शेर सो रहे थे कुछ, है ना, सो नहीं रहे थे, वो जंगल के पास में थे, तो वो भी अग्नि को देख रहे थे। तो उन्होंने शेर को बुलाया, इधर आओ। तो शेर आया, प्रणाम किया, बोला देखो जंगल बहुत बड़ा है, आग लग रही है, हम सबको पार करा दो आप। तो बोलते हैं सारे शेर लोग ने क्या किया, उनको बिठाया और सब लोग पार करा दिया जंगल। जब उस गांव में पहुंचे जान को प्रचार करना तो सब लोग डर गए, अरे ये क्या शेरों की सवारी करके आ रहे हैं। तो शेरों को बोले देखिए आप लोग ने अपना सेवा कर दिया, अभी आप लोग दोबारा जंगल में जाओ और कृष्ण का स्मरण करो जाके। ये है रसिकानंद प्रभु। सोचिए ऐसी बहुत सारी लीला है रसिकानंद प्रभु की, अगर पूरा ग्रंथ शिला भक्ति विकास महाराज ने पूरा ग्रंथ लिख के दिया है ये रसिकानंद प्रभु के विषय में, रसिक मंगल का ट्रांसलेशन करके दिया है। तो आइए हम कुछ उनके जन्म से संबंधित कुछ लीलाओं को जानते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि शिला रसिकानंद प्रभु का जो जन्म हुआ वो रोहिणी नामक जो नगर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे पे, मल्लभूमि पहले डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, अभी वो एक ही डिस्ट्रिक्ट हो गया है, वहां पे दोलंगा नदी है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था अच्युत महाशय और इनकी माँ का नाम था भवानी देवी। और इनके अच्युत महाशय की और भी पत्नियां थी, लेकिन ये जो भवानी थी ये भगवान की भक्ति में बहुत मग्न रहती थी हमेशा, और इनकी एक ही कामना थी कि मेरा अगर पुत्र हो तो इस उड़ीसा का उद्धार करने वाला हो, इस उड़ीसा में बहुत ज्यादा खराब लोग बस गए हैं, मेरा पुत्र इसका उद्धार करने वाला होना चाहिए, पूरे जगत का उद्धार कर सके, और डेली भगवान से यही प्रार्थना करती थी। तो भगवान की कृपा हुई और भगवान ने अपनी कृपा स्वरूप उनके गर्भ में प्रवेश किया अंश अवतार के रूप में रसिकानंद, ऐसा ये रसिक मंगल में वर्णन है। तो फिर उनका जन्म हुआ, 1590 ईस्वी में जन्म हुआ उनका, और जन्म के बाद फिर उनका नाम संस्कार हुआ। तो नाम संस्कार में ऐसा हुआ कि कुछ ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने कुछ कृष्ण का नाम स्टार्ट किया, वैष्णवों ने आके कृष्ण का नाम लेना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण का नाम सुना तो रोने लग गए रसिकानंद प्रभु, रोते रहे। माँ ने बहुत प्रयास किया, माँ को लगा कि भूखा है तो अपने स्तन से लगा लिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं हुए। तो सब लोग जोर जोर से बोले कैसे होगा ये, अब ये क्या करें। तो फिर बाद में वर्णन आता है कि किस तरह से उन्होंने सब लोग ने मिलकर कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण बच्चे को क्या हो गया, रोई जा रहा है। तब रसिकानंद प्रभु शांत हो गए, ठीक है प्रार्थना किया मैं शांत हो जाता हूँ, शांत हो गए। तब जो ज्योतिष लोग आए थे उन्होंने बताया कि देखो अच्युत महाशय, अरे ये जो तुम्हारा पुत्र है ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण के ही समान है, ऐसे बोला। हाँ, और इसकी जो बुद्धि है सुखदेव व्यास बृहस्पति उनसे भी ज्यादा है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता इन सब चीज में। हाँ, और तुम्हारा जीवन धन्य हो गया आज, और ये बालक क्या करेगा, ये बालक पूरे उड़ीसा को ही नहीं, पूरे उत्कल को नहीं, पूरे विश्व का उद्धार करेगा ये बालक। ये सुन के तो बहुत खुश हो गए अच्युत महाशय, इतने खुश हो गए वो ज्योतिष को बोले देखो मैंने आपको नामकरण करने बुलाया था, लेकिन मैं प्रेम से है ना इसको एक नाम देना चाहता हूं, अगर आप लोग की मेरे ऊपर कृपा हो तो आप कोई नाम मत देना, मैं ही मेरा नाम दूंगा अभी इसको। तो बोलते मुरारी, उनको नाम क्या दिया, मुरारी नाम हो गया उनका, मुरारी नाम हुआ। लेकिन शुरू से ही जब भी कोई कृष्ण बोल देता इनके सामने तो कृष्ण कृष्ण कहकर गिर पड़ते, बचपन में बच्चा कैसे बोलते ना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गिर जाते थे वो इस तरह से। तो सब लोग बोले यार ये तो रसिक है, ये तो कृष्ण लीला में रस का आस्वादन करता है कृष्ण नाम में, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया रसिक। क्या पड़ गया, रसिक, और जो आनंद लेते हैं कृष्ण की लीला में इसलिए रसिकानंद, है ना, रस कौन है, कृष्ण है रस, और उनमें जो आनंद ले उनको क्या कहते हैं, रसिकानंद, इस तरह से। तो उनका नाम पड़ गया रसिकानंद। अभी रसिकानंद, अब देखिए घटना मैं सुनाता हूं आपको, हुआ ऐसा कि इनके पिताजी ने इनको पढ़ने के लिए भेजा, तो बोलते हैं दो आचार्यों से पढ़ाई किया इन्होंने, श्री कृष्ण दुबे और जगन्नाथ मिश्र, उनसे संस्कृत सीखा। और कृष्ण, और ये जो श्री कृष्ण दुबे थे ये नित्य कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। और एक बार क्या किया इन्होंने, रसिकानंद प्रभु को एक रासलीला सुना दिया, रासलीला होने से पहले जब गोपियों का कृष्ण गोपियों से दूर हो जाते हैं तो वो महिमा सुना दी। अब इसको सुन के रसिकानंद प्रभु इतने भाव विभल हो गए कि वो अपने आप को गोपी मानने लगे, और गोपी मान के वो जंगल में भाग गए और चिल्लाने लगे हे कृष्ण तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे प्राण धन मेरे नाथ, अब मेरा कौन है संसार में। हाँ, और भटकने लगे जंगल, बोलते 7 दिन तक जंगल में भटकते रहे बिना किसी चीज की परवाह किए, और उनके पिताजी 7 दिन तक ढूंढते रहे कि मेरा पुत्र कहां गया, और मूर्छित अवस्था में प्राप्त हुए। जब घर लेके आए तो इनके पिताजी ने सोचा कि अब तो ये बड़ा हो गया है और इस तरह से करेगा तो क्या होगा मेरे पुत्र का। तो उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कराना चाहिए, एक ही अच्छा तरीका है, विवाह हो जाएगा तो पत्नी रहेंगी तो फिर उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। रसिकानंद प्रभु तो बोलते हैं कि इनकी पत्नी जो थी ना वो भी कोई कम नहीं थी। बोलते हैं कि एक लड़की थी, उसका नाम था इच्छा देवी। जब से उसने जन्म लिया तब से कृष्ण कृष्ण बोलती थी वो। हाँ सेम, जब से कृष्ण कृष्ण बोलती थी। और 5 साल की उम्र से जब उसको समझ में आया कि उसको विवाह करना होता है और एक लड़की को घर जाना होता है, पति के पास रहना होता है, तो वो कृष्ण से यही बोलती थी, कृष्ण अगर आप मुझे पति देना चाहते हो ना तो अपने ही जैसा देना, जिसकी सेवा में है ना जन्म जन्मांतर कर सकूं, जन्म जन्मांतर मैं अब उनकी सेवा कर सकूं, इस तरह से। तो उनका नाम इच्छा देवी था और वो बलभद्र की कन्या थी। तो एक बार जब बलभद्र को बुलाया इन्होंने, क्योंकि ये लोग जमींदार थे तो आते रहते थे, तो बलभद्र ने जब पहली बार रसिक मुरारी को देखा तो देख के आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित ही नहीं हुए, मूर्छित होकर गिर गए। तब पानी डाल के उठाया तो बोला क्या हो गया आपको। बोला ये बालक कौन था। बोला यही तो मेरा पुत्र है जिसके विषय में आपको बता रहा। बोला नहीं, ये तो साक्षात, ये तो करोड़ों कामदेवों को भी सुंदरता को खत्म करने वाला ये बालक। हाँ तो बोलते कि मेरी जो पुत्री है इच्छा देवी, ये उसी के योग्य है। मैं इतनी जगह ढूंढा लेकिन आज तक मुझे कोई मेरी पुत्री के लिए वर नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पुत्र को देख के मैं डिसाइड कर लिया हूं कि मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ ही होगा। ये सब सुना अच्युत महाशय तो एकदम खुशी हो गए, क्योंकि वो तो उसी लिए ढूंढ रहे थे किससे विवाह होगा, तो एकदम खुश हो गए। तो विवाह का प्रबंध किया गया, रसिक मुरारी ने अपने माता पिता की बात को स्वीकार किया विवाह के लिए। लेकिन बीच में इच्छा देवी के जो पिताजी थे वो शरीर छूट गए, उनका शरीर छूट गया, वैकुंठ चले गए। उसके बाद में फिर उनके जो छोटे भाई थे सदाशिव, ऐसा वर्णन आता है, उन्होंने शादी का पूरा प्रबंध किया। और रसिक मंगल ग्रंथ में वर्णन आता है कि जो कोई व्यक्ति अगर रसिकानंद प्रभु की विवाह का वर्णन सुनता है तो वो कभी इस भौतिक जगत के जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं फंसेगा, इतना स्पेशल है ये। तो सोचिए भक्तों का जो कार्य होता है ना, उनको कभी भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे ये तो साधु महात्मा बनते थे विवाह कर लिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त कौन किस भाव में क्या सेवा करेंगे कुछ नहीं पता किसी को, समझ रहे ना आप। इसलिए कभी भी भक्तों को है ना इस तरह का निंदा नहीं करना चाहिए, कभी भी, ना माता जी को ना प्रभु जी को, है ना। लेकिन जगन्नाथ बाबा जी महाराज के विषय में बता रहे थे कि वो सभी जो बाबा जी लोगों को धिक्कारते थे, क्यों धिक्कारते थे कि उन्होंने संन्यास लिया था, सब बाबा जी उन्हें बाबा जी वेश में रहते थे, लेकिन स्त्रियों का संग करते थे, वैश्याओं का संग करते थे, वैश्यव्रति करते थे, तो धिक्कारते थे। लेकिन कोई स्त्री उनके पास आती थी बाबा जी महाराज के पास में तो उनको क्या कहते थे कि ये मेरी वृषभानुनंदिनी है। सोचिए उनका स्तर, ये राधा रानी है, क्या सोचते थे, क्या कहते थे पराई स्त्री को, वो राधा रानी, ये है उनका स्तर। सोचिए चाणक्य पंडित ने क्या बोला कि माता के समान समझना है पराई स्त्री को, है ना, जो माता मातृपत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। लेकिन जगन्नाथदास बाबा जी महाराज ने क्या बोला, नहीं उनको राधा रानी के समान समझना है। कितना स्तर है देखिए, यहीं से शुरुआत हुई। इसलिए क्योंकि दोनों आचार्यों का सेम वो है, तो विवाह हुआ उनका। और विवाह आगे वर्णन आता है कि एक पुत्री का जन्म हुआ और 3 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार की घटना आती है कि इनकी जो पत्नी थी एक बार सब्जी काट रही थी, गोपी जो उनके जो गोविंद क्या नाम था विग्रह का, गोपी वल्लभ भगवान के लिए बना रहे थे, भोगा बनाने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तभी इनका जो बालक था छोटा रोने लग गया, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से रोने लगा। ऐसी घटना आती है, रोने लगा जोर जोर से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सब्जी काट रही थी उसको बंद कर दिया, बच्चे को उठाया, उसको स्तनपान कराया और उसी के उसको हिलाने लगी, बहुत अनेक अनेक प्रकार से खुश करने लगी। उसी समय रसिक मुरारी आ गए। रसिक मुरारी ने देखा कि भगवान की सेवा बंद हो गई, कोई सब्जी नहीं काट रहा है, अब तक तो भोग बन जाना चाहिए। तो रसिक मुरारी ने देखा कि वो बच्चे को लेके खिला रही हैं उनकी वाइफ, उनको बड़ा क्रोध आ गया, क्रोध में डांटने लगे। रसिक मुरारी बोलने लगे, अरे तुमको माया ने प्रभाव कर दिया आज, तुम्हें माया ने प्रभाव कर दिया, इस प्रभाव के कारण तुम क्या सोच रही हो, ये बच्चा तुम्हारा है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इस तरह से। और तुमने कृष्ण से ज्यादा इस बच्चे को लगाव किया, कृष्ण की सेवा छोड़ के, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कोई भी पुत्र तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। बड़ा सब लोग आश्चर्यचकित, सारे शिष्य लोग जो थे रसिकानंद प्रभु के, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे अरे भाई ये क्या हो गया। तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय उनके 6 पुत्र थे, 6 शरीर छोड़ दिए, रसकानंद पुर के, हाँ, छह पुत्र शरीर छोड़ दिए, फिर बाद में तीन पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, है ना, उनके नाम आता है, एक का नाम है राधानंद, कृष्णागति कृष्णागति और राधा कृष्णदास, और बेटी का नाम है वृंदावनी, है ना। बाद में रसकानंदपुर के बाद में इन्हीं तीनों ने बहुत प्रचार किया उत्कल में, तो ऐसा वर्णन आता है। तो एक दिन ये बैठे थे, ये गुरु की खोज में थे कि मुझे कौन दीक्षा देगा, कहां से मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूं इस तरह से। तो घंटाशिला एक नामक जगह है जहां पे पहले पांडवों ने निवास किया था, और वहां पे 12 शिवलिंग हैं जिन शिवलिंग की पूजा स्वयं भगवान राम ने अपने हाथ से की थी। तो ये वहीं पे गए अपने परिवार को लेके कुछ दिन के लिए, इनके पिताजी भी साथ में थे, सब लोग थे वहीं पे, भक्ति कर रहे थे सब लोग मिलके। तो एक दिन ये ध्यान में बैठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं किसके आश्रम में जाऊं जिसके आश्रम में रहके मैं कृष्ण भक्ति सीख सकूं। इनकी उम्र थी 18 साल उस समय, और जैसे ही एक ध्यान में बैठे तभी एक बालक प्रकट हो गया इनके ध्यान में, सुंदर बालक, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप, सर में मोर पंख है, बांसुरी हाथ में है। तो उनको कृष्ण का दर्शन, कृष्ण बोलने लगे, हे पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु श्यामानंद है। कौन है तुम्हारे गुरु? श्यामानंद, वो अभी ब्रज में है और तुम्हारा उद्धार करने के लिए वो ब्रज से उत्कल आएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम केवल उन्हीं के चरणों का ध्यान करो। ये जब देखा तो बहुत आश्चर्य हो गए रसकानंद प्रभु, और तब से बस एक ही उनके मन में कि कब मुझे श्यामानंद महाशय के दर्शन होंगे, श्यामानंद प्रभु के दर्शन होंगे। रोते रहते थे, हा श्यामानंद कब कृपा करोगे। और इधर ब्रज में क्या हुआ, एक दिन आरती कर रहे थे ये मदन मोहन मंदिर में, सनातन गोस्वामी की विग्रह की सेवा कर रहे थे श्यामानंद जी, तो वहां पर ठाकुर जी उनको बोले साक्षात, हे श्यामानंद उत्कल जाओ। कहां जाओ? उड़ीसा जाओ, और उड़ीसा में एक भक्त है रसकानंद, उसके साथ मिलके क्या करो, उसको अपना शिष्य बनाओ और पूरी उड़ीसा का उद्धार करो जाके, ये मैंने तुम्हें दे दिया डिपार्टमेंट। वो तो रोने लगे, भगवान मैं तो ब्रज में रहने आया था, आप मुझे उड़ीसा भेज रहे हो? बोला नहीं, यही मेरी आज्ञा, जाओ। सोचिए, तो हम सोच सकते हैं कि रसकानंद प्रभु का क्या भक्ति है। सोचिए, भगवान ने भेजा श्यामानंद प्रभु को, जाओ उनके पास में। तो गए श्यामानंद प्रभु, जब श्यामानंद प्रभु गए और घंटाशिला पहुंचे श्यामानंद प्रभु, तो राजा के दरबार में बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे थे अलग अलग चीजों का, और उस समय जब ये श्यामानंद प्रभु एंट्री किए तो सबके चेहरे फीके पड़ गए। वहां बहुत सारे अलग अलग कर्म मीमांसा के उपासक, बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग फिलोसफी बात करते थे, लेकिन भक्ति करने वाला कोई नहीं था। और रसकानंद प्रभु थे ये भक्ति के एक बात भक्त थे, और सब लोग ऐसे ही रहते थे। जब श्यामानंद प्रभु ने प्रवेश किया तो सब लोग चुप हो गए, और राजा ने बोला कि आप कौन हैं? तब उनको एक शिष्य ने बताया कि श्यामानंद प्रभु हैं। जब ये सुना तो राजा उस जगह का घंटाशिला का जो राजा था वो भी चन्नों में गिर गया, और श्यामानंद नाम सुनते ही उनके शरीर में रोमांचित हो गया रसकानंद प्रभु के शरीर में, और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा ग्रंथ बोलता है कि उन दोनों के मिलन के वर्णन को कौन कह सकता है। वो जो मिलन हुआ श्यामानंद प्रभु का रसकानंद प्रभु का, मैं अगर करोड़ों मुख से भी बोलूं, रसिक मंगल जो ग्रंथ के आचार्य जो लेखक वो बोलते हैं कि मैं करोड़ों मुख से भी बोलूं वो भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए उनकी ग्लोरीफाई करना, कि कितना सुंदर दोनों का श्री विग्रह था, रसकानंद प्रभु का और उनका श्यामानंद प्रभु का। तब श्यामानंद प्रभु के चरणों में लौट गए और बोलने लगे कि प्रभु मैं आपका दास बनना चाहता हूं, और मुझे वृंदावन अपने साथ ले चलो, मैं इस भौतिक जगत में रहना नहीं चाहता, मैं तंग हो चुका हूं इस घर की लाइफ से, ये वो, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के बिना नहीं रह सकता मैं। तब श्यामानंद प्रभु ने उनको हृदय से लगाया और कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण आपके पास में ही है, कहीं दूर नहीं जा रहे, हमें क्या करना है, इस उत्कल प्रांत का उद्धार करना है, यहाँ बहुत सारे पाखंडी हो गए हैं, पाषंडी हो चुके हैं, सब लोग कृष्ण को भूल चुके हैं, मेरी आज्ञा है तुम क्या करो, यहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तब से उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया, और इनके जो प्रचार है वो इतना इतना प्रभावशाली है कि आप लोग ने कभी सुना भी नहीं होगा इस तरह का प्रचार किया इन्होंने। मैं घटना सुनाऊंगा, इनके संबंध में दो लोग थे, एक का नाम था भीम, एक का नाम था सीकर। भीम और सीकर ये गोप जाति के थे, गोप जाति मतलब ऐसी जाति के थे, और इनके जो संबंधी थे वो लोग सब कृष्ण की सेवा करते थे, लेकिन ये दोनों इतने डिग्रेडेड हो गए कि इनको समझ में नहीं आता था कि देवी देवता कौन है, भगवान कौन है। ये लोग क्या करते थे, सब पे जानवरों की बलि चढ़ाते थे, इतने पापी हो चुके थे ये लोग, और सबको बरा बुला कहते थे, सबको लूट मार करते थे। तो सब लोग ने बोला रसकानंद प्रभु को, रसकानंद प्रभु देखिए ये जो धारंदा जो जिला है ना, धारंदा, उसमें आपके रिलेशन में आते हैं वो लोग, और ये भीम और सीकर यदि आपने इनका उद्धार कर दिया ना, पूरा धारंदर भक्त हो जाएंगे, सब लोग भक्ति कर लेंगे क्योंकि लीडर है वहां के। तो बोला कि ठीक है, श्यामानंद प्रभु का स्मरण करके गए आगे। तब गए तो क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़ी असेंबली थी राजा की, और अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्रकार के विद्वान आए थे, बहुत ज्ञानी भट्टाचार्य, जिनको है ना बहुत ज्ञान था शास्त्रों का। तो वो लोग आए तो सब लोग अपना अपना डिस्कस सुनो। वहां पे राजा के पास में ही इन दोनों का स्थान था, भीम और शिखर का। इतने बड़े लोग थे, लूट लूट के धर राजा को देते थे, राजा भी कुछ नहीं कहता था उनसे, है ना, राजा भी खुश रहता था उनसे। तो जब ये रसकानंद प्रभु आए तो सब लोग आश्चर्य हो गए उनके तेज को देख के, प्रभाव को देख के, रसकानंद प्रभु के प्रभाव को देख के। और सब लोग बोलने लगे, अरे इस व्यक्ति के प्रभाव को तो देखो, आज सूर्य चंद्रमा का भी तेज फीका इसके सामने, ऐसे करके बोलने लगे। कोई बोलने लगा, अरे साक्षात सारे देवी देवता मिलकर एक प्रकट हो गए इधर। कोई बोलने लगा, स्वयं कामदेव आ गए इधर। इस तरह से राजा अपनी सीट से खड़ा हो गया उनके इस प्रभाव को देख के, और राजा ने उनको चरण धोए, राजा ने इतना प्रभाव, सब लोग उनका गुणगान करने लग गए। और फिर उनको आसन बोला कि आप मेरे आसन पर बैठिए, राजा ने बोला। रसकानंद प्रभु के नहीं, राजा की सीट मैं नहीं ले सकता, मैं साइड में बैठूंगा। साइड में बैठे, तब सब लोग ने प्रार्थना किया कि आप कौन है, कैसे पधारे बताइए। तो कुछ लोगों को पता था ये अच्युत महाशय के पुत्र हैं, कई लोग मिल नहीं पाए थे उनसे। जब उन्होंने बताया कि मैं अच्युत महाशय का पुत्र हूँ, श्यामानंद मेरे गुरु हैं, ये सुनकर सब लोग शांत हो गए। सब लोग ने दंडवत किया उनको कि आज एक शुद्ध भक्त से हमारा संगति हो गया। तब उन्होंने प्रवचन किया, भीम और शिखर भी वहां बैठे थे, सुनिए, है ना। वो प्रवचन करने लगे कि देखिए मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, आप लोग क्या कीजिए, अपने आप की काम कीजिए, कुछ भी करो, केवल कृष्ण भक्ति को मत छोड़ो। तुम कुछ भी करो, कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है, सब कुछ छोड़ो, ये कर्म मीमांसा सांख्य ये सब छोड़ो, तुम लोग केवल कृष्ण का भजन करो। कृष्ण भजन करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा, और कृष्ण भजन के अलावा कोई इस कलयुग में दूसरा देह है ही नहीं, इस तरह से बोला। अब ये भीम और जो शंकर थे ना, ये लोग क्रोधित हो गए, ये बोलने लगे, अरे क्या छोटी सी उम्र में तूने सन्यास ले लिया, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, सन्यास नहीं, छोटी सी उम्र में तू साधु बन गया, तो बहुत बड़ा अपने आप को मानना है ना। अरे जाओ घर जाओ, पत्नी बच्चों को संभालो, ये बच्चों का काम नहीं भक्ति भक्ति करना, ऐसे बोलने लगे। सब लोग सम्मान किए, सब लोग गुस्सा हो गए इनके ऊपर, है ना। तब रसकानंद प्रभु बोले कि ठीक है, मैंने सुना है तुम लोग भी बहुत बड़े पंडित हो, है ना, और तुम्हारा ग्रुप भी बहुत बड़ा पांडित्य का इधर है। मैं सबको चैलेंज करता हूं, मेरे से शास्त्रार्थ करो, यदि तुम लोग सब एक बार भी अगर एक पॉइंट भी मेरे से जीत गए, मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा फॉलोवर बन जाऊंगा। भीम और शिखर सुनिए, छोटा सा बच्चा क्या जीतेगा, हा? थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको हरा देगा। तो वहां पर बहुत सारे भट्टाचार्य, बहुत सारे लोग आ गए और बोलते हैं कि बहुत बड़ा शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ। और देखो वर्णन नहीं करूंगा शास्त्रार्थ में क्या क्या हुआ, क्योंकि टाइम तो हो गया, ऑलरेडी खत्म हो गया टाइम, लीला इतनी सारी है, समय इतना सा था। तो बाद में सबको उन्होंने परास्त कर दिया, और ये भीम और शिखर की आंखों में आंसू आ गए कि यार हम लोग कहाँ खोए थे अभी तक, और उनके चरणों में गिर गए और उनको गुरु रूप में स्वीकार किया कि आप हमारे गुरु हो। सोचिए, तो बहुत महान, मतलब अब देखिए मुझे बोला गया कि टाइम पे खत्म करना है और दोनों के विषय में बोलना है, तो मैंने टाइम पे भी खत्म कर दिया, दोनों के विषय में बोल दिया, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप लोग को कोई क्वेश्चन है किसी के विषय में तो पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन कुछ। तो आज देखिए शिला प्रपात जी ने भी उनके विषय में लिखा है, रसकानंद प्रभु के विषय में। हाँ कौन पूछ रहे हैं कुछ? हाँ पूछिए प्रभु जी, चालू कीजिए प्रभु जी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप खड़े होके बोल दीजिए जोर से। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। मेरे से ले लीजिए, हैं खुश रहे, क्योंकि आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं बहुत सालों की प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कहीं कहीं से लेते लेते आप लोग परेशान हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, मेरे से ले लीजिए, ठीक है। और कुछ और कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ माता जी बोलिए। और वैष्णव कैलेंडर और महाप्रभु का जो जन्म स्थान उसका प्रकट किया जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने, तीन कार्य जगन्नाथ बाबा जी महाराज की लीला बहुत है, अगर आप लोग आधे घंटा देंगे तो मैं आधे घंटा सुनाता रहूंगा। सुनेंगे? चलो ठीक है, सुनेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, आप बैठिए, मैं वर्णन करता हूँ अच्छे से। तो हम लोग जगन्नाथ बाबा जी महाराज के विषय में और सारी लीलाएं सुनते हैं। देखिए जिसको जाना है ना वो अभी चले जाइए, क्योंकि बीच में उठ के जाएंगे तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। जिनको जाना है अभी चले जाइए, भक्त लोग बोल रहे हैं तो मैं सुना सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत। एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि नदिया ग्राम में जो नवदीप था, मैं कुछ ही लीला को सुनाऊंगा 10-15 मिनट फिर हम लोग बंद कर देंगे। नवदीप में क्या हुआ, देखो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना इसलिए गड़बड़ हो रहे हैं। एक बार जो उनके सेवक थे बिहारी, वो बीमार हो गए तो क्योंकि नवदीप में बहुत बाढ़ आई थी, बाढ़ के पानी से बहुत सारा गड़बड़ हुआ तो बीमार हो गए। इतना बीमार हो गए कि उनका बचना मुश्किल हो गया, बिहारी का बचना मुश्किल हो गया। तो बाबा जी महाराज ने अलग अलग डॉक्टरों को बुलवाया कि देखिए डॉक्टर को, हरे कृष्णा आपको जाना है तो जाइए पर बात मत कीजिए प्लीज। तो बहुत सारे डॉक्टर आए, बहुत सारे चिकित्सक आए, सब ने देखा कि क्या क्या बात है, क्यों ठीक नहीं हो रहे। एक चिकित्सक ने बोला कि आज 24 घंटे के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, कोई इनको नहीं बचा सकता, इनका पूरा शरीर खराब हो चुका है। सब लोग दुखी हो गए, और भी शिष्य वो भी रोने लगे, अरे बिहारी चला जाएगा तो क्या होगा, बिहारी दास चला जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से। तो ऐसे ही हुआ, तब बाबा जी महाराज को क्रोध आ गया। बाबा जी महाराज बोले, अरे ये क्या बात कर रहे हो, क्या हमने कोई साधन नहीं किया, मैं देखता हूं आज मृत्यु को देखता हूं और मेरे भजन को देखता हूं किसमें कितना दम है, देखते हैं। तो बाबा जी महाराज ने क्या किया, बिहारी को अपनी गोद में ले लिया बिहारी को, और गोद में लेके बाबा जी महाराज चैंटिंग करने लगे हरे कृष्ण महामंत्र की। बोलते पूरा एक दिन चैंटिंग किया, जो 24 घंटे बोले ना 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु नहीं हुई, उनकी आंखें खुल गई। बिहारी की आंखें खुल गई, बिहारी दास जी की आंखें खुल गई, और बिहारी दास जी ने प्रणाम किया बाबा जी महाराज को। बाबा जी बोले, बिहारी तूने कुछ खाया? बोले नहीं कुछ नहीं खाया। तो बोलते बिहारी बोलता है, बाबा जी मुझे बहुत भूख लगी है। तो बिहारी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि देखो बिहारी मुझे तुम्हारे हाथ के अलावा ना किसी का नहीं बनता, जाओ कुकिंग करो जाके। बिहारी बोलता है, मैं कैसे कुकिंग करूं, मुझे इतना भूख लग रहा है, भूख में कुकिंग थोड़ी होगा। बिहारी बोलते, तूने मेरी इतना सेवा किया आज मैं तेरे लिए कुकिंग करता हूं सच में। तो उनके गुरुदेव ने उनके लिए कुकिंग किया, और जब वो कुकिंग करके उनको खिलाया तो पूरा अष्ट सात्विक विकार बिहारी के शरीर में भी आ गया, और बिहारी भी दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलने लगे हर समय। ऐसा प्रभाव है बाबा जी महाराज का, सोचिए। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत सारे लोग आए बाबा जी महाराज के पास में, बड़े बड़े महंत जो उधर रहते थे, है ना। तो बोलने वो आए नवदीप में और बोलने लगे, जो जहां पे उनका जो समाधि जो भजन स्थान था वहां पे आए और बोलने लगे, बाबा जी महाराज हमने सुना है बहुत सिद्ध महात्मा हो, आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हो, हमें कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? क्योंकि जब तक कलयुग के लोग चमत्कार नहीं देखते ना तो नमस्कार नहीं करते किसी को, है ना। तो बाबा जी महाराज को ऐसा किया, बाबा जी ने डंडा लिया ऐसे ऐसे मारा, तो सब लोग डर गए कि बाबा जी हमारे गुस्सा हो गए। बाबा जी महाराज बोले, सब लोग इधर आओ और देखो मैंने पता डंडा क्यों मारा। ये लोकनाथ गोस्वामी जी को समाधि है गोकुलानंद मंदिर में, एक तुलसी का पेड़ है और उस तुलसी को, है ना, खाने जा रही है बकरी, मैंने बकरी को उठाने का डंडा मारा है, जाओ चेक करके आओ बकरी खा रही थी कि नहीं खा रही थी, जाओ। सच में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, यार कहां नवदीप कहां वृंदावन, वाह। उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा, उस समय टेलीग्राम की व्यवस्था थी, एक टेलीग्राम किया बहुत पैसे लगा के कि पता करना है बाबा जी सच में ही सही है या गलत है, सच में ऐसा हुआ। तो टेलीग्राम भेजा, तो टेलीग्राम में ये लिखा था कि क्या इस डेट में इतने क्षण में इतने समय में कोई बकरी आई थी खाने के लिए, है ना। तो वो वहां का जो सेवक था उसने टेलीग्राम किया कि हाँ एक बकरी खा रही थी पर अचानक पता नहीं बकरी को क्या खा नहीं पाई और भाग गई, क्योंकि बाबा जी ने 3 बार हड़का दिया उसको। तो फिर वो सब बाबा जी के चरणों में गिर गए, बोला बाबा जी हमसे गलती हो गया, हमें क्षमा कर दो। तो बाबा जी ने यही बोला, तुम लोग सब कलयुग के लोग हो हैं, इसलिए क्या कहते हैं मैंने तुम्हें चमत्कार दिखाया। तो ऐसा वर्णन आता है। तो एक बार क्या हुआ बाबा जी महाराज वृंदावन आए। जब वृंदावन बाबा जी महाराज आए तो खादिरवन जो है ना वहां पे रहने लगे, और खादिरवन के आसपास आज भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था, एक कुआ था वहां पे, उसी के नजदीक रहने लगे। बिहारी जी और सेवक भी थे बाबा जी के साथ में, बोलने लगे बाबा जी महाराज यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं खाने पीने की, हमारा क्या होगा। बोला कुछ नहीं होगा, हम भजन करेंगे कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं कि 3 दिन हो गए भजन करते करते, बिहारी की तो स्थिति मरने जैसी हो गई, है ना। तो बाबा जी बिहारी की तरफ देखते हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो बिहारी को बोला आज भोजन आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना, आज भोजन आएगा। तो वहाँ पे एक ब्रजवासी, उन्होंने देखा कि ये लोग 3 दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो ब्रजवासी ने अपने दूर गांव में बोला और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की सामग्री लाने लगे। बोला इतने सिद्ध महात्मा कि 3 दिन तक एक ही जगह बैठ के नाम जप कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको अलग अलग प्रकार की सामग्री दिए। इस तरह से एक बार क्या हुआ, नवद्वीप में बरसात होने लगी जोर से, नवद्वीप में बरसात होने लगी, तो बरसात इतनी होने लगी कि अभी क्या करें, कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं बिहारी से, बिहारी अब प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी, बारिश हो रही इतनी जल्दी। हाँ, तो बिहारी बोलता है मुझे तो कुछ नहीं पता बाबा जी महाराज, मैं बारिश में जाऊँगा तो फिर से बीमार हो जाऊँगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलते भजन करो। तो बोलते हैं उसी समय दो व्यक्ति आए और बोलते हैं 50 किलो चूड़ा और दही लेके आए, 50 kg, और बाबा जी महाराज के चरणों में समर्पण किया। बोला बाबा जी महाराज आपको ही देने आ रहे, थोड़ा लेट हो गए बारिश के कारण, आप इसको लीजिए। बिहारी आश्चर्य हो गया देख के, अरे वाह। एक बार क्या हुआ, बाबा जी महाराज जब भी कुछ धन बन आता था ना तो ऐसे ही दान कर देते थे। तो बिहारी को लगा अरे यार कुछ बाबा जी महाराज कुछ मतलब इकट्ठा नहीं करते पैसा, क्योंकि कभी मुसीबत में तो मुझे भटकना पड़ता चारों। तो उन्होंने क्या किया, 200 रुपया थे उन्होंने 18 रुपया अलग कर दिए, है ना, और वो बाबा जी महाराज के पास रख दिए। तो बाबा जी महाराज बोले क्या बिहारी 18 रुपये कहाँ है। बिहारी बड़ा आश्चर्य, इनको दिखता भी है क्या, इनकी तो आंखें बंद रहती है हमेशा। बिहारी वो बोले बाबा जी महाराज जी 18 रुपये हैं। बोला टोटल 200 हुए ना। हाँ, बोला 200 हुए। बोला अभी काम करो, ये 200 रुपये लेके मार्केट में जाओ और खूब सारा गुलाब जामुन छेना सब लेके आओ। बोला बाबा जी मेरे फिर क्या करना है उस गुलाब जामुन छेना का, आप तो खाते नहीं। बोला मुझे नहीं खाना है, नवदीप में जितनी गैया है ना गाय उन सबको खिला दो, जाओ मेरी आज्ञा है। यार आश्चर्य हो गया, जैसी आज्ञा वो इतना सारा लाया और सब लोग को खिला दिया। तो ऐसी सी लीलाएं आती हैं। हाँ मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत की, मेरा जो भाव चल रहा है ना फिर वो टूट जाएगा वहां से। सुनिए देखिए, वैष्णव के कार्यों को सुनना ही जीवन की एकमात्र वो है, हमारा जीवन की पूर्णता है। तो आज समय है तो हम सुन सकते हैं। मैं कौन सी लीला पे था। हाँ, एक बार क्या हुआ, बाबा जी महाराज जब प्रसाद लेते थे तो नवदीप में कुछ पिल्ले रहते थे, कुछ जो पिल्ले होते हैं ना बच्चे, कुत्ते के बच्चे, वो आके क्या किए बाबा जी महाराज का प्रसाद वो भी उस थाली में खा रहे हैं, वो भी खा गए। बिहारी को देखे बड़ा गुस्सा आया, बिहारी ने बोला कुत्तों को बच्चों को भगा दिया, पिल्लों को भगा दिया। बाबा जी महाराज गुस्सा हो गए, बोला मैं भी नहीं खाऊंगा। बोला बाबा जी महाराज उन्होंने आपका प्रसाद छूटा कर दिया। बोला तुम जानते हो बिहारी ये कौन है, ये धाम के वासी हैं, जब तक तुम इनको नहीं बुलाओगे ना और मेरे साथ प्रसाद नहीं खिलाओगे ना मैं एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। बिहारी बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे 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 तो गड़बड़ हो गया। वो गया कुत्तों से प्रार्थना किया, चलिए लेके आया सच में। फिर उनको खिलाया। हाँ, उनको खिलाया। फिर देखिए मैं बताता हूँ, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जब वृंदावन में आए थे पहली बार, तो उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य कुंड पे बाबा जी महाराज का दर्शन किया। बाबा जी महाराज के शरीर के लक्षणों को देख के समझ गए कि एकमात्र यही सिद्ध बाबा हैं, और उनके चरणों में नमस्कार किया और अपना जो कार्य था, जो उनको करना था नवद्वीप में जो स्थान, उसके लिए प्रार्थना किया। तब वो भक्ति विनोद ठाकुर को उन्हें आशीर्वाद दिया कि भक्ति विनोद आप, केदारनाथ था उस समय उनका नाम, आप अपने कार्य में सफल होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, आप जो प्रचार कार्य आप जो सोच रहे हैं ना वही होगा। तो ऐसा वर्णन आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं शिला जगन्नाथदास बाबा जी महाराज। ऐसे वर्णन आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो दीक्षा लिया था, मैं कल सेवंत गोस्वामी बुक पढ़ रहा था तो उसमें वर्णन आता है विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिया था, खुद लिखे हैं इस चीज को, लेकिन एक अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में उन्होंने जगन्नाथ बाबा जी महाराज को ही दर्शाया है, ऐसा सेवंत गोस्वामी आचार्यगण लिखते हैं। तो ये दोनों ही हमारी परंपरा एक ही है, कोई अलग अलग परंपरा नहीं है, एक ही वैष्णव परंपरा है। तो ऐसा वर्णन आता है शिला भक्ति विनोद ठाकुर के गुरुदेव और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिक्षा गुरु, है ना, और इन चारों आचार्यों का जो मिलन हुआ स्वानंद सुगत कुंज, जो गोद्रिम द्वीप में जो जगह है जहां भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, वहां पे हमारी परंपरा के चारों आचार्य मिले। कौन कौन चारों आचार्य, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, सबसे पहले शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके पिता श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर, और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और शिला जगन्नाथदास बाबा जी महाराज, वो एक स्थान है जहाँ पे चारों आचार्य एक साथ बैठ के कृष्ण कथा की है ना। ऐसा बोलते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जो बाबा जी वेश धारण किया वो शिला जगन्नाथदास बाबा जी महाराज से धारण किया। वो दीक्षा किनसे लिया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बाबा जी जो वेश होता है, जो बाबा जी वेश धारण करना होता है, तो उन्होंने जगन्नाथदास बाबा जी महाराज से ही लिया, ऐसा लिखा हुआ है बाबा जी वेश। तो इतना उनके विषय में वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ, बिहारी इनको लेके जा रहा था, टोकरी में लेके जा रहा था, ठीक है, टोकरी में जब लेके जा रहा था बिहारी, तो अचानक क्या हुआ, रास्ते में जा रहे थे तो एक शेर सो आए, शेर की लाल लाल आंखें चमक रही थी, शाम का समय था, बिहारी ने मार्ग बदल लिया डर के मारे, क्या करें, अब कौन मरने के लिए जाएगा। ऐसा हुआ, जब बिहारी ने मार्ग बदल लिया तो बाबा जी बोले क्या हो गया, पीछे क्यों जा रहे हो लौट के, तो बोले बाबा जी सामने है ना शेर है, खा जाएगा हमें। बाबा जी बोले अरे कुछ नहीं, वो महाप्रभु का पार्षद है, वो तुमसे मिलने आया है ना, हमसे मिलने आया था वो, तुम लोग मिले बिना तुम आ गए उससे, चलो दोबारा उसी 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 जगह चलो। जब दोबारा गए तो शेर गायब हो गया। वो आ गए आराम से चले गए। तो ऐसा वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ, बिहारी ने सोचा कि अरे क्योंकि सब लोग उसमें विद्वान थे सब लोग, तो बिहारी तो अनपढ़ थे, बंगला नहीं आता था, बिहारी को हिंदी आता था पर बंगला नहीं आता था, है ना, बिहारी दास जी को, उनको बंगला नहीं आता था। तो उस समय चरित्रामृत नाम का ग्रंथ था जिसमें वैष्णवों की जीवनी को लिखा गया था, कुछ कुछ वैष्णवों के जीवन के बारे में, तो उनकी बड़ी इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन क्या करें बंगाली, तो बंगाली भाषा में कैसे पढ़ें। तो बिहारी एक दिन टेंशन ले रहा था, यार क्या करूं, मेरा तो जीवन बेकार हो गया, भक्तों का चरित्र भी मैं नहीं पढ़ सकता, है ना। तो इस तरह से मनन कर रहा था, बाबा जी समझ गए, क्या चिंता है तुम्हें, बताओ मुझे चिंता क्या है तुम्हें। तो बोले कि चिंता यही है कि काश मैं भी बंगाली भाषा पढ़ा होता तो चरित्रामृत को पढ़ लेता थोड़ा सा। तो बोला जाओ खरीद के लेके आओ, मार्केट से खरीद के ले आओ चरित्रामृत। वो मार्केट से लेके आ गया, अब करे क्या, बोला पढ़ो। बोला मैं कैसे पढ़ू, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। बोला देखो अक्षर की तरफ देखो, तुम एक अक्षर की तरफ देखो, बंगला के एक अक्षर की तरफ देखा, फिर बोला दूसरे अक्षर की तरफ देखा, अब इसको कंबाइन करो और पढ़ो। तुरंत बिहारी को बंगाली पढ़ना आ गया। सब लोग आश्चर्य हो गए, बोला हिंदी भाषी बंगाली पढ़ने लग गया वो एक क्षण में, बाबा जी महाराज की कृपा के थ्रू। सोचिए, है ना। मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि दूसरा प्रोग्राम भी है इधर, है ना, एक लीला और सुना के। ऐसा हुआ क्योंकि अभी तमाल परमपूज तमाल कृष्ण महाराज का मुझे याद आ गया, क्योंकि वो पूरा सजावट वगैरह करना है सर, उसके लिए समय जाएगा, उनकी शिष्य गाना है इधर। तो एक बार क्या हुआ, शिला जगन ये बोले, इनको बोले, बिहारी को बोले, बिहारी तुमने मेरी इतना सेवा किया, बहुत सेवा किया तुमने मेरी, है ना, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी भर के धन देना चाहता हूँ, एक बैलगाड़ी भर के धन में तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम उसको स्वीकार करना, है ना। बिहारी सोचने लगा अरे बाबा जी तो फकीर हैं, ये धन कहाँ से देंगे मुझे, है ना। तो बोले अरे ये मत सोचो कि फकीर हूँ, मैं अभी गौर नेताई को बोलूंगा तुम्हें पूरा संपत्ति दे देंगे, हाँ, लेकिन फिर ऐसा होगा कि तुम्हें संपत्ति को ले लो या मुझे ले लो, तुम्हें फिर डिसाइड करना पड़ेगा, देख लेना। वो डर गया बिहारी, बोला नहीं नहीं मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बाबा जी मैंने हृदय से लगा लिया, बोला मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हाँ, बाबा जी ने हृदय से लगा लिया। और बाबा जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि बिहारी आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, क्योंकि तुमने अपने गुरु को चुना, है ना, तुमने धन को नहीं चुना, हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। क्या आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारी उम्र 200 साल होगी, कितनी होगी, 200 साल तक तुम कृष्ण नाम का प्रचार करोगे, और कभी भी तुम्हारे जीवन में भौतिक भौतिक मतलब भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, और राधा कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद दिया बिहारी को, बिहारी दास को आशीर्वाद दिया। और बिहारी दास ने जब ये आशीर्वाद जैसे ही अपने गुरु से लिया, तुरंत बिहारी के शरीर में अष्टसात्विक विकार हो गया, कृष्ण 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 कह के गौरांग गौरांग कह के चिल्लाने लगे। हाँ मैं समझ गया, फ्रेश हो गया मैं वही बोला, ये लोग सुनने के बाद इच्छुक थे, थोड़ा सुना दिया। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद, आप लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपने इतना सब सुना, मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा।